ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ताई विधि रही ये है, चाहे झोपड़ी में बास हो है, क्या है वो, चाहे महलों में बास हो चाहे झोपड़ी में बास हो, लेकिन जब परमात्मा झोपड़ी में तुमको भेजता है तब परमात्मा से तुम नाराज हो जाते हो। भजन तो गाते थे हो, भजन तो गा देते हो भगवान के सामने, हे भगवान चाहे तुम महल में रख चाहे झोपड़ी में रख, तुम्हें जहां इच्छा हो वहां रखो। मुझे झोपड़ी में रखकर तुमको आनंद आ रहा हो, मैं झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूं, समझे कि नहीं। मुझे महल में रखकर तुम्हें आनंद आ रहा हो, मैं महल में रहने को तैयार हूं। लेकिन हम अपने आप को भगवान से भी बड़े मान लेते हैं ना। भगवान से बड़े किस लिए मानते हैं? हमको महल में रहने पर ही आनंद आएगा, इसलिए हम महल में ही रहेंगे, झोपड़े में तो किसी हालत में नहीं जाएंगे महाराज। हमको महल ही चाहिए, झोपड़ी नहीं। परमात्मा कहते हैं तुम्हें झोपड़ी में रखकर हमको आनंद आता है, तो उस समय क्या कहोगे बोलो हैं? उस समय क्या कहोगे? हमको तो रस और पूरी खाने से ही आनंद आता है महाराज, हमको तो रस पूरी ही चाहिए। अब परमात्मा कहता है महाराज रस पूरी नहीं, कभी कभी बाजरे की बासी रोटी भी नमक और मिर्ची के साथ खाओ बेटा, हमको आनंद आएगा। तुम खाने को राजी हो कि नहीं बोलो? वहां नहीं होते हो तब समस्या आई, वहां तुम क्या कहते हो? नहीं महाराज, मेरे द्वारा बाजरे की बासी रोटी और नमक मिर्ची से बासी रोटी खाने पर तुमको आनंद आता है, भले आवे, हम नहीं खा सकते। तुम्हारा यही कहना है कि नहीं बोलो हैं? मानो कि उस भोजन से आनंद, तुम अपने को आनंदित होना चाहते हो, इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। इसलिए भक्ति अधूरी हो जाती है। उस क्रिया से तुम आनंदित होना चाहते हो खुद, जबकि वह क्रिया परमात्मा खुद आनंदित होने के लिए तुमसे करा रहा है, तो ये गलती हम करते हैं। तो परमात्मा के संकल्प में और हमारे संकल्पों में संघर्ष चल पड़ता है। परमात्मा के संकल्प में और हमारी दिनचर्या दैनदिनी में संघर्ष चल पड़ता है, तब जीवन विषाद हो जाता है। विषाद आनंद नहीं होता है। आगे का श्लोक, बहुविध परितोष बाष्प पूर स्फुट पुलकांचित चारु भोग भूमि चिरपद कांक्षी सद्यमान परम सदा शिव भावना प्रपद्ये। बहुविध परितोष, देखो योग में योग करने वाले योगियों को योग सिद्धि से पहले योग की सिद्धि के कुछ लक्षण दिखता है। ये लक्षण उस योगी साधक के जीवन में आवे तो मानो कि योग ठीक रास्ते पर चल रहा है। ये पूर्व भूमिका है, वो लक्षण से अनुमान करते हैं। और योग की जो भूमिका है वही भक्ति की भूमिका है, भक्ति शास्त्र में भी वही भूमिका है। तो आपकी भगवान के प्रति जो होने वाली भक्ति है, भक्ति भाव, वो भक्ति भाव कितनी पराकाष्ठा में है उसकी पूर्व भूमिका लक्षण दिखता है भक्तों ने। ये स्वाभाविक भक्तों के स्वाभाविक लक्षण हो जाते हैं। इसको फिर नाटक के रूप में आप प्रस्तुत नहीं करना, ये लक्षण भक्तों के जीवन में स्वाभाविक अभिव्यक्त होते हैं। क्या है तो बहुविध परितोष, भगवान की भक्ति अनेक प्रकार के संतुष्टि का कारण है। भक्त कभी भी असंतुष्ट होता ही नहीं। असंतुष्टि भक्त का लक्षण नहीं है। मैंने पहले एक भजन की पंक्ति गाई ना, जाई विधि राखी है ताई विधि रही है, वहां असंतोष का कहां है, असंतुष्टि कहां है वहां पर। जाही विधि राखी है ताई विधि रही है, तो असंतोष कहां है वहां पर है? बात मरे, भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं बाप मरने पर है? मां मरने पर भगवान से असंतुष्ट होगा कि नहीं? भक्त तो नहीं होगा। जाही विधि राखी है ताही विधि रही है, पति मरने पर भगवान का भक्त असंतुष्ट होगा कि नहीं, बोलो होगा है? अन्यथा नहीं लेना हो। भक्त तो ये कह सके, महाराज पति न मरा है तुम तो नहीं मरे हो, ये कहने का हिम्मत होना चाहिए कि नहीं भक्तों में, बोलो है? ये होनी चाहिए कि नहीं? पति मरा और रो नहीं रहा है, कोई पूछे पति मर गया क्यों नहीं रो रही हो, और खुद भगवान पूछे तुमसे तुम्हारा पति मर गया और तुम क्यों नहीं रो रही हो, तो तुम क्या जवाब देना है तुम्हें? पति मर गया तुम तो नहीं मर रहे हो, बोलो। जाही विधि राखे राम है, इतना साहस होनी चाहिए कि नहीं, बोलो ना भक्तों में। जाही विधि राखे राम, बहुविध परितोष, ये अन्यथा संसार में को लोक माराध ये तुम समर्थ। कालिदास जी ने एक वाक्य लिख दिया है, ये संसार में किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी, कोई भी किसी को भी पूर्ण रूप में प्रसन्न नहीं कर सकता है। एक को खुश करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा खुश तीसरा नाराज, एक वस्तु से वो प्रसन्न है दूसरे वस्तु से नाराज। को लोक माराध ही तुम समर्थ, तो एक ही चीज है संसार में, बहुविध परितोष, हर प्रकार से संतुष्ट होना भक्त का लक्षण है। हंसे तो ठीक, रोए तो ठीक, चले तो ठीक, बैठे तो ठीक। बहुविध परितोष बाष्प पूरा, दूसरा लक्षण बाष्प पूरा, भक्तों के भक्ति साधना के काल में, योगियों के योग साधना काल में और भक्तों के भक्ति साधना काल में बाष्प पूरा, उसके शरीर से पसीना निकलेंगे। हाँ, तो भक्तों का लक्षण है। और हम तो पसीना आने लग जाए तो घबरा जाएंगे, एसी कहां गया। स्फुट पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने का, पुलकांकित शरीर में कंपायमान होने लगेगा। चारु भोग भूमि, आनंद की भूमिका है वो। चिरपद कांक्षी सेव्य माना, चिरपद कांक्षी सेव्य माना, जो नित्य आनंद के अनुभव करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा सेव्य, उन्हीं को ही चिरपद प्राप्त होगा उनके द्वारा। परम सदाशिव भावनाम प्रबंधे, परम सदाशिव की भावना भक्ति इस शरण में प्रपद्य में जाता हूं। तो परम शिव के जो भक्ति चरण में जिसकी अनन्य भक्ति है, वो भक्ति का प्रभाव यह है कि बहुविध परितोष, हर प्रकार की संतुष्टि प्राप्ति होगी, बाष्प पूरा। इसको अन्यत्र योग भूमि में इस तरह भी लिखा है, स्तंभ स्वेदो अथ रोमांच स्वर भंगो अथ बेपथु हो, भक्त स्तंभ हो जाता है, कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, स्तंभ जड़ की तरह। भागवत आदि लक्षणों में तुम पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई सब स्तंभ हुए, स्तंभ हुए। भागवत में लिखा है जंगल के जो मृग सावक हैं, मृग हैं, घास खा रहे थे और मुख में जो घास लिया तो मुख ही में है। बच्चे मां के दूध पी रहे थे, चूसना बंद कर दिया, स्तंभ। जो जहां है वहीं स्तंभित हो गया। भगवान की बांसुरी का ध्वनि ऐसा मधुर था, इतना सम्मोहक था, पशु जंगल में घास चरते चरते जहां पहुंच गए थे वहीं खड़े हो गए। मुख में घास है, न वो परित्याग कर रहे हैं, न नीचे या उतार रहे हैं, स्तंभ। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। स्वेदः शरीर में भाव उद्रेक होने पर पसीना निकलने लगता है। अतः रोमांच लक्षण है, ये भक्ति पराकाष्ठा के लक्षण है। शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, रोमांच। स्वर भंगो, कुछ बोलना चाहें बोली नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं निकलती। बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते, स्वरभंग। वे पतुः शरीर कांपता है। वैवर्णम उसका जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। अश्रु प्रलय, जोर जोर से आंख से आंसू निकलने लगते। यही भक्ति के सात्विक भाव है। ये सात्विक भाव है, लेकिन आजकल देखते हैं कोई कोई ये लक्षण पढ़ लेते हैं और समाज में बड़े नामी भक्त होने के लिए ऐसे ही रोने लग जाते हैं, नाटक की तरह रोने लग जाते हैं। कोई कहे अरे ये तो बड़ा भगवान का भक्त है, ये सिद्ध करने के लिए कहां अपने लगते हैं। बहुत देखते हो है? कहीं भगवान का भजन हो रहा हो, नाम जप हो रहा हो, कि संकीर्तन हो रहा हो, तो कीर्तन करते करते कांपने लगते हैं। ले जी दो थप्पड़ मारो तो उनकी कांप गई। ये स्वाभाविक होनी चाहिए, ये भक्तों के लक्षण हैं। बहुविध परितोषा बाष्प पूरा स्फुट पुलकांकित चारु भोग भूमि चिरपदकांक्षी सेव्यमानाम परम सदा शिव भावनाम प्रपद्ये। आर्यचंद। अमित मुदमृतम मुहुर्दुहंतिम विमल भवत्पद गोष्ठमा वसंतिम सदय पशुपते सुपुण्य पाकाम परिपालय भक्ति धेनु मे काम। भक्त बड़े कभी कभी बदमाशी भी करते हैं, कहते हैं अमित मुद मृतम मुहुर दुहंती। मैंने एक गाय पाल रखी है, शंकराचार्य जी कह रहे हो शिव जी से, सीधे कह रहे हैं शंकराचार्य जी भगवान शिव से, सीधे कह रहे संवाद कर रहे हैं। मैंने एक गाय पाल रखी है, बड़ी अच्छी गाय है। अमित मुदा मृतम मुहुर दुहंती। अमित माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुद माने प्रसन्नता का, आनंद का। अमृतम मुहुर दुहंती, बार बार जब चाहो तब जान चाहो वहां दू सकते हो, जितने बार चाहो उतनी बार दू सकते हो। वो देने में समर्थ ऐसी गाय मैंने पाल रखी है। विमल भवत पद गोष्ठमा वसंती। लेकिन समस्या यह है महाराज, उस गाय को बांधने के लिए मेरे पास अच्छा गोठ नहीं है। क्योंकि भैंस को तो जहां भी बांध दो चल जाता है, सुअर के लिए बहुत साफ स्थान चाहिए है? दुनिया में गंदा सा गंदा स्थान में रख दो तभी आनंद से रहता है कि नहीं सुअर है? लेकिन गाय रह सकती है ऐसी जगह? नहीं रह सकती। इसलिए उसको बहुत अच्छा जगह चाहिए, बढ़िया गोश्त चाहिए। मैंने संसार में बहुत जगह घूम घूम कर देखा, उस गाय के लिए गाय के अनुकूल गोश्त मुझे प्राप्त नहीं हुआ कहीं भी। एक जगह मुझे मिल गया है महाराज, वो क्या है? विमल पद विमल भगवत पद गोष्ठम, निर्मल आपके जो चरण रूपी गोष्ठ है वही मैं इस गाय को बांधना चाहता हूं। बस महाराज, तुमने गाय का नाम क्या रखी है? नाम होता नहीं गाय के? गाय के विशेषण तो बता दिया, अमितम उदम अमृतम मुहूर्त दो अंतिम, लात मारने तो जानती ही नहीं हो गई। हालांकि लोक व्यवहार में कहा जाता है भैंस कभी लात नहीं मारती है कहते हैं, गाय लात मारती है कहते हैं, लेकिन ये हमने जो गाय पाली है वो लात मारने तो जानती ही नहीं है। क्यों नहीं जानती है महाराज वो गाय लात मारने क्यों नहीं जाती है? क्योंकि आपके लात के आश्रय में बैठी है तो किसको मारेगी वो? है भगवत पद विमल भगवत पद गोष्ठम आवसंतिम, वो गाय आपके निर्मल चरण रूपी गोठ के अलावा और जगह बैठना ही नहीं चाहती है वो। है भवत विमल भवत पद गोष्ठम, आपके जो चरण है वही उस गाय के लिए उत्तम गोष्ठ है गोठ। वहां यदि आपने आश्रय दिया तो वो गाय बड़ी खुश होगी और मुझे नित्य निरंतर अमितम उद अमृतम मोर दुहंती, जब चाहो तब मैं उससे अमृत दू सकता हूं, हर वस्तु के लिए आनंद का अमृत दूध के रूप में दे सकती है सदाया। महाराज कृपा करो, हमारे एक भक्त है, एक बार हमारे पास आकर उन्होंने कहा, ये सच घटना हो, और संयोग से उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था, घर में एक कुत्ता पाल रखा था, औसतन कुत्ते की आयु 14-15 वर्ष 12-14 वर्ष, ज्यादा ज्यादा 15-16 वर्ष की आयु है, उसे ज्यादा कुत्ते नहीं बांसते हैं, औसतन आयु वही है। उनके बहू बेटे दोनों बाहर चले गए, विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, तो एक बाई रखा था उन्होंने घर में काम करने के लिए, बहुत पुरानी बाई, अक्सर उस कुत्ते की देखभाल वही बाई करती थी, समय में खाना देना, उसको बाहर ले जाना, घुमाना, है ना, बाई करती थी। बाई वृद्ध हो गई तो मर गई बाई, दूसरी बाई मिली नहीं, घर में कुत्ता है 16 साल का हो गया, हो बहुत बूढ़ा है कुत्ता, अब अपने आप मर नहीं रहा है, घर में पाला हुआ है, अब उसको मारने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, पाला हुआ कुत्ता कैसे मारेगा, अब उस बूढ़े कुत्ते को कोई दूसरा पालेगा भी नहीं, उसके लिए ऐसा बंधन हो गया है कि उस कुत्ते को छोड़कर एक दिन भी कहीं बाहर जा नहीं पाती है। उसी कुत्ते के लिए समय में खाना देने के लिए घर में रहना पड़ेगा, आकर मुझे सुनाती है, महाराज और कोई बंधन नहीं है घर में, कुत्ते का बंधन है। अब क्या कहूं भाई, कहां रखें उसको, और लेके जाए तो कहां लेके जाए, छोड़ के जाए तो किसके यहां छोड़ के जाए। वो जब तक नहीं मरेगा तब तक मुझे उसके अधीन में होकर घर छोड़ ही नहीं पाती हूं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मेरी जो गाय है ऐसे विलक्षण है वो है। अब इस गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद नहीं करती है, करेगी? आजकल की बहू पसंद करेगी? सास ने ये गाय पाल रखी है, मान लो भगवान शिव की भक्ति रूपी कामधेनु सास ने पाल रखी है, अब भक्ति रूपी गाय को लेकर बहू के यहां जाओ तो बहू पसंद करेगी है? बेटे के यहां जाओ तो बेटा पसंद करेगा? तो तुम्हारे लिए ये मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो है? तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। अमितम उदम अमृतम मुहूर्त दुहंतिम, बार बार तुमको अमृत की प्राप्ति हो रही है, छोड़ भी नहीं सकते। और संसार में कोई भी तुम्हारे द्वारा धारण की हुई भक्ति को किसी को देने जाओ, कोई लेने को तैयार होता नहीं। आज के जमाने में कोई भक्ति लेने को तैयार है? बोलो। कभी कभी तो ये बिना मतलब का भक्ति हमने शुरू कर लिया, मुसीबत हो गया। कई बार शालिग्राम लाते हैं घर में वो शालिग्राम मुसीबत हो जाता है, मुसीबत हो जाता है। लेके जाएं तो अमेरिका कहां लेके जाएंगे? तुलसी का पत्ता मिलता नहीं। महात्मा ने शालिग्राम दिया था रोज तुलसी का पत्ता चढ़ाना, यहां थे तो चढ़ाते रहे, अब अमेरिका जाना है तो लेके जाएं तो वहां तुलसी का पत्ता मिलेगा नहीं, यहां छोड़ के जाएं तो बहुत चढ़ाएगी नहीं तुलसी का पत्ता, मुसीबत हो गई कि नहीं बोलो, क्या करें? भक्ति भी कभी कभी मुसीबत होती है। शंकराचार्य जी को हो गई, तुम्हें नहीं होगी। इसलिए उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि ये भक्ति काम देनु, भक्ति देनु काम में काम, एक ही गाय है वह आपके विमल भवत पद गोष्ठ में आवसंतिम, वही बैठना राजी है, इसलिए हम आपके चरण रूपी गोठ में उस भक्ति को बांध देना चाहते हैं। सदय पशुपते सुपुण्य पाताम, मेरे अनेक जन्मों के सत्फल सत्कर्मों का फल परिपक्व हुआ तब जाकर आज मुझे बढ़िया गोठ प्राप्त हुआ, गोठ प्राप्त हुआ। कौन सा गोठ? भगवान के चरण रूपी गोठ की प्राप्ति हुई है बात। अब ये भगवत भक्ति रूपी गाय इसी गोठ में मैं बांधता हूं। मम परिपालयः, महाराज इस गाय को पालने का काम आपका है, आपके प्रति मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसकी रक्षा करने का काम आपके है, आपके चरण में मैं अर्पण कर रहा हूं है। मम परिपालयः भक्ति देनु में ये काम, मैं और किसी को पत्नी को पालो मैं नहीं कहूंगा, बेटे को पालो ये नहीं कहूंगा है, मां को पाल लो बाप को पाल लो मुझे पाल लो ये नहीं कहूंगा। एक भक्ति जो मेरे पास है उसको आप पालन करो, अपने गोठ में पालन करो, और ताकि अमृत दूध मैं पी सकूं। बोलो, भगवान को तो गोठ के गोठाला बनाने चाहते हैं शंकराचार्य जी, ग्वाला बना दिए भगवान के। बोले गाय भी तुम्हारी है, गोठ भी तुम्हारा, पालन पोषण तुम ही करो, हमको तो अमृत पान करना है बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ।